फिर उसके बाद देखिए अगली चीज तालीम और तरबियत, जिसके ऊपर मेरा कड़वा जुमला कह दूं कि इससे तो उम्मत कटी हुई है। आप इनको वजीफों के लिए बुला लें आने को तैयार, मिलाद के लिए बुला लें आने को तैयार, कुरान खानी के लिए तैयार, इसाले सवाब के लिए तैयार, बरकतों के लिए तैयार, लेकिन तालीम और तरबियत ये बहुत मुश्किल है। उफ, ऐसे लगता है कि ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे, कि ये भी को करने का काम है। चलिए तालीम तो फिर भी ले लेते हैं कि चलो दी इल्म लेना, तालुम के दर्जे पे कौन पहुंचता है। हाय नहीं, अब जी हमने कोई टीचर थोड़ी बनना, बस इतना सीखना था, अब घर बैठो। हालांकि आप देखिए कि इसमें कितने खूबसूरत अकवाल हैं। इमाम सिंधी कहते हैं, इल्म का नतीजा और फ़ायदा तकवा है। पीछे भी आपको मैंने ये जुमला लिखाया था कि इल्म का खुलासा तकवा है। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, बहुत खुश नसीब वो लोग हैं कि बग़ैर इल्म के भी मुत्तकी हों। आज के दौर में जिसने भी अपने अंदर चेंज पैदा की वो इल्म के रास्ते से पढ़े। आप में से कितने लोग गवाही देंगे, कुरान का इल्म ज़िंदगी में आया तो गुनाह बुरे लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग कहते हैं अच्छे थे, अच्छे हैं आप। मैं कहती हूँ अच्छे तो हम तब थे जब हम कुछ नहीं करते थे। ये तो इल्म ने हमारे अंदर के भी ऐब खोल के दिखा दिए कि अभी भी ठीक नहीं, अभी भी ठीक नहीं। तो तकवा आता ही इल्म से है, और शैतान को याद रखिए इसीलिए इल्म बुरा लगता है। वो हमें इधर की सरगर्मियों में डालेगा, उधर की डालेगा। कभी देखे तो सही लोग जो आज दीन के नाम पे काम करते हैं, वो चीज़ें करने के ख्वाहिशमंद होते हैं जो अभी खुद भी नहीं की हुई। कहीं सोशल वर्क है, कहीं कुछ है, लेकिन इल्म की तरफ नहीं आएंगे। खुद पढ़ा नहीं, दूसरों को क्या पढ़ाएंगे। और मैं आप सबको नसीहत करती हूँ, आप जो नए लोग हैं, पुराने हैं, अपने लिए सोच के करती हूँ कि आप में से जो आगे बढ़ना चाहता है पहले उसको अपनी तालीम को नज़र में रखना पड़ेगा। आप खुद क्लास में नहीं तो आपको कभी कोई छोटा या बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा। हमने उस प्रोजेक्ट को पानी में डालना है। आप में तकवा किधर है? आप तो थोड़ा आगे जाके आपस में लड़मट के बैठ जाएंगे। ना आप में इत्तेहाद होगा, ना टीम वर्क। अभी मैं तो गई नहीं, अभी अन्ना तो गई नहीं, अभी खुद पसंदी तो गई नहीं, खुद नुमाई तो हमारी गई नहीं, हम कहाँ किसी को कुछ देंगे। तो याद रखिए, सीसा पिलाई दीवार बनती है ना, वही टीम बनती है जो इन सारे दर्जों से गुजर चुकी होती है। 4 घंटे उस्ताद बैठा रहे, बुलाता रहे, बैठते रहो, कोई बाथरूम में नहीं जा रहा, कोई ब्रेक नहीं, ये सब्र आता है, इससे कुछ नहीं हो सकता। कितने लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ का रिगार्ड करूंगी कि मैसेज उनके आते हैं। ये आज फ्राइडे से लेके आज तक 3-4 लोगों ने मैसेज किए इसी तरह के, क्या जाना मुश्किल है, ये है। मैंने हल्की सी उनसे बात की कि क्या मसला है बताइए, फिर थोड़ा सा उनसे बात की और वो सब आए अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड क्लास के टीचर्स ने बात की, इधर उधर जहाँ भी हुआ, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सोचा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि अभी, यानी इनको इस चीज़ का एहसास है कि थोड़ा सा कोई इनको समझाए तो वो आ जाते हैं। और अगर कहे तो चले रहा, अल्लाह आपको दे, चले जाइए, आप आराम करें, आपका बच्चा बीमार, आप बीमार, आप भी सोए होते, अल्लाह की कसम इस वक्त कभी ना हम सुन रहे होते अगर हम यहाँ ना आते, हम घर बैठे होते। ये किताब, ये चीज़ें ही तालीम और तरबियत होती हैं। इसके बगैर आप देखिए, लोग काम शुरू करते हैं 6 महीने साल बाद फिर काम हवा हो जाता है। शुरू बहुत जोश से होता है, अंदर कोई नहीं, क्योंकि आपके पास वो कॉन्क्रीट नहीं है जिसके ऊपर आपने दीन की इमारत खड़ी करनी है। तो इसके लिए जलना भी पड़ता है, जलाना भी पड़ता है, इसके लिए जागना भी पड़ता है, जगाना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, सुनाना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, पढ़ाना भी पड़ता है। तो इसलिए तालीम व तालुम के बगैर किसी को दीन का कोई काम दे देना, प्रोजेक्ट दे देना, आप कहते हैं हमारी वेबसाइट बना दें, वो क्या करेगा? वो उसके अंदर अपनी मर्जी से काम करेगा। जहाँ ज़रा सी बात कोई ऐसी हुई जिस पे उस पर तनकीद हुई, वो छोड़ के भाग जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसका उम्मत को शौक दिला दे। आप तो माशाल्लाह इल्म वाली बैठे हैं, आपकी तो तारीफ हो रही है इधर, लेकिन हर एक को इसका शौक नहीं है। शौक भी है लेकिन कुर्बानी के जज्बे नहीं, और बीच में रुकावटें बहुत सी हैं। फिर ये लिखते हैं कि ये इल्म ही की देन है जिसकी बुनियाद पर हराम चीज़ों की खराबी, इसको हाईलाइट करिएगा, इल्म की बुनियाद पर हराम चीज़ों की खराबी और इसमें पाई जाने वाली बुराइयों का पता चलता है। इज इट ट्रू? बिल्कुल सच, 100% बात है। देखिए, आप कोई खाना लेके आते हैं, मिसाल है आप कोई फिश का पैक लेके आए बनी हुई, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना कि इसमें कोई अल्कोहल तो नहीं है, इसमें कोई हराम इंग्रेडिएंट तो नहीं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें हराम क्या। ये है बात यहाँ। फिर इसी तरह से अगर इंसान पिछली कौमों के अंजाम पर गौर व फिक्र कर ले तो आंखें बंद करके वो तकवा और परहेजगारी को अपना शार बना ले। अब यहाँ चंद सवाल खुद से पूछिए, क्या वजह थी जिसने आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवाया और दुनिया के गमों और दुखों वाले घरों में आए, यानी अल्लाह के हुक्म से रूह गर्दानी का नतीजा था। फिर दूसरा सवाल खुद से पूछिए, वो क्या असबाब थे जिसने इब्लीस को अल्लाह की नज़रों से गिराकर ज़मीन पर धुतकवारा। इहबितू मिन्हा जमीयन, सब उतर जाओ, निकलो मेरी जगह से। कहाँ कुद्दूसियों की जगह पे था और धक्के मार के निकाल दिया गया। कैसे उसकी शक्लो सूरत को बदल के अल्लाह ताला ने उसको पीछे कर दिया, ये भी अल्लाह ताला का तकवा ना होने की अलामत थी। कहाँ वो मुकर्रबीन में से था और आंधा दरगाह बन गया, कहाँ अल्लाह की रहमतों के साए में था और अब लानत का तौक उसके गले में डल गया, कहाँ जन्नत की वादे बहारां का हकदार था और कहाँ अब जन्नत की दहकती हुई आग इसका ठिकाना है। अल्लाह की नज़रों से गिरकर इब्लीस कहीं का न रहा और फिस्क व फजूर में डूबे हुए हर मुजरिम का आज यही हाल है। तकवा से दूरी बंदे को मुजरिम तक बना देती है। फिर तीसरा सवाल खुद से कीजिए, वो क्या वजह थी जिसकी बुनियाद पर इस कायनात रंगो बू में बसने वाली एक पूरी कौम को डुबो दिया गया। सैलाब के पानी ने पहाड़ों की चोटियों और पर्वतों की इस आसमान से बाती करती हुई ऊंचाइयों को अपनी जद में लिखा। आसान कर लीजिए, वो क्या वजह थी जिस पे कौम नूह डुबोई गई। और फिर चौथा सवाल कीजिए कि क्या वजह थी कि कौम आद पर काली आंधी आई जो खैरो बरकत से यकसर खाली थी, जिसने मुजरिमों की जड़ काट दी, जहां से गुजरी उसको चूरा चूरा कर दिया और पुश्तों के पुश्ते लगा दिए, किसी को जमीन पर ना बख्शा, जो सामने आया उसका काम तमाम कर दिया। तो वो भी क्या था, तकवा से महरूमी। फिर पांचवा सवाल खुद से कीजिए, वो क्या वजह थी जिसकी बुनियाद पर कौमे समूद पर तेजो तुन कड़ाके की आवाज आसमानी चीख के तौर पर भेजी गई, जिसकी वजह से सीनों में इनके दिल फट गए और देखते ही देखते सब ठंडे पड़ गए, और जितने उनके दावे थे, जितनी उनकी अपने आप को बड़ा समझने की बातें थी, खाक में मिल गई। छठा सवाल पूछिए, वो क्या वजह थी जिसने हजरत लूत की बस्ती को खला में उठाकर आसमान के करीब ले जाकर नीचे पटख दिया, हत्ता कि इनके कुत्तों के भौंकनों की आवाज़ें भी सुनी गईं और इनकी बस्तियां मलिया मेट कर दी गईं, इसके ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का ऊपर कर दिया गया, फिर इन पर कंकर वाले पत्थरों की बारिश की गई जो तह बतह लगते चले गए, फिर उनकी जगह गंदे और बदबूदार जोहड़ में बदल गई कि आज तक वहां किसी जीरूह का नाम नहीं। ये भी तकवा से महरूमी थी। सातवां सवाल, वो क्या बात थी कि जिस पे कौम शुएब पर साइबान वाला अजाब भेजा गया, कि एक बादल का टुकड़ा जब उनके सर पे आया, जब नीचे जमा हो गए तो उसमें से आग बरसी, जमीन लर्जी, आग के शोले बरसे और सख्त चिंगाड़ ने उनको हमेशा की नींद सुला दिया। फिर नवा सवाल लिखिए, क्या बात थी कि फिरौन और उसकी कौम को समंदरों में डुबो दिया गया और उनकी रूहों को जहन्नुम में मुंतकिल किया गया, जहाँ सुबह शाम इनको पेश किया जाता है। ये सब का कॉमन आंसर आपके पास यही होगा कि ये तकवा से महरूमी थी। तकवा कितनी बड़ी दौलत है। आप देखिए कि अल्लाह ताला की इस नाराज़गी से बंदे को बचाने वाली चीज़ ही सिर्फ तकवा दिख रही है, अजाबों से बचाने वाली चीज़ ही तकवा है। इसी तरह एक अरबी शायर है मसर, जो उनके शायर उनका खुलासा क्या है, कहते कि जिस शख्स को मार्फत इलाही की लज्जत और चाशनी मिल जाती है, सोचे ज़रा, अल्लाह को पाना, मारफत, उर्फ, उसकी पहचान, उसकी कुदरत, उसकी लज्जत है लज्जत इसमें, बिल्कुल है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, और चाशनी भी होती है अल्लाह की मार्फत में, इससे ज़्यादा तो मिठास ही किसी चीज़ में नहीं है। ये अगला टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जब ये मोहब्बत मिलती है ना, तो उसके दिल से हराम कारी से हासिल होने वाली लज्जत ख़त्म हो जाती है, फिर वो कैफ और सुरूर ख़त्म होता है, वो सारा नशा हरन हो जाता है, शराब का हो या किसी और मुसीबत का, जब अल्लाह की मोहब्बत का नशा आता है। आप इमेजिनेशन में लाइए किसी शराबी को, लोग अमूमन शराबियों के साथ क्या रवैया अख्तियार करते हैं, लान तान, गुस्सा, झिड़क, ये भी करके देख लें, और अगर ये गोली ना चली हो ना, तो आज इस सबक से अपने लिए अमल की बात लेते हुए, अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा शख्स है ना, उसको अल्लाह की मोहब्बत का नशा दिलाए, क्योंकि एक वक्त आता है कि इंसान के असाब इतना जवाब दे चुके होते हैं कि फिर इंसान किसी की नहीं सुनता, वो कहता चुप करो, अपनी नसीहतें अपने पास रखो। आप उसको अल्लाह की मोहब्बत का नशा दे दें, और ये वो नशा है कि जो शराब के नशे को भी हरन कर देगा। इसके लिए दुआएं भी करने की ज़रूरत होती है, इसके लिए वही तरीका अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह की बात, अल्लाह की किताब, उसकी नेमतों पे गौर, कायनात पे गौर व फिक्र, ये सब चीज़ें इंसान को लाती हैं। ओपन एयर में जाएं, वॉक करें, आसमान देखो, सूरज देखो, प्रैक्टिकल चीज़ों में लेकर आएं ऐसे लोगों को। उनको कमरे के बंद माहौल से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत दिखाइए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसी तरह आप देखिए कि एक शख्स का वाक्य इन्होंने लिखा है कि उसने औरत से जिना किया, फिर औरत प्रेग्नेंट हो गई। अब जानी को फिक्र हुई कि मैं करूँ तो क्या करूँ, शादी कर लूँगा तो ख़ानदान बुरा कहेगा, जो बच्चा माँ के पेट में उसको कत्ल कर दूंगा तो एक और जुर्म है, और अगर उसको माँ के पेट में ही रहने दूँ और जब बच्चा पैदा हो जाए तो जाके उसको कहीं फेंक आऊँ तो भी नहीं ठीक, जाऊँ तो किधर जाऊँ। आप नोट करें, एक से एक, एक से एक मुसीबत आ रही है ना उस पर, किसी तरफ उसका रुख नहीं है। सबसे बचने का तरीका क्या था कि इस गुनाह को करने से पहले अल्लाह को याद कर लेता। तो अक्सर मैंने ये जुमला भी बोला है तफसीर की क्लासेस में कि कुछ लोगों को गुनाह करने के बाद रब याद आता है, कुछ को उसके बाद भी याद नहीं आता, और बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको गुनाह करने से पहले रब याद आ जाता है। ये गुनाह करने से पहले रब के याद आने को तकवा कहते हैं। जो बाद में सीक्वेंसेस होने उसको पहले ही छोड़ दो। आपने देखा होगा जो सिस्टर्स बहुत वेट वॉचर होती हैं ना, ये खा लिया तो ये होगा, सोने जैसी चीज़ है, सारी दोस्तें तारीफ कर रही है, एक बाइट लेके देखो कितना मज़े का डिजर्ट है, क्या है, वो कहते छोड़ो, एक मिनट की बात है, मैं नहीं खाती, मैंने मीठा छोड़ा हुआ है। नहीं खाते लोग। मैं ऐसी सिस्टर को जानती हूँ जो मीठे से परहेज कर रही थी, बल्कि इस हद तक कि बेटे की शादी आ गई और कहती मैंने अपने बेटे की शादी का मीठा नहीं खाया। जो हमारे यहाँ बड़ा एक मारूफ काम है कि जी फलां की मीठा उसका जरदा तो खा लो, नहीं खाना तो नहीं खाना, कुछ और खा लेना, ये नहीं खाना। तो जब हम चंद किलो वजन कम करने के लिए इतने वेट वॉचर हैं, तो गुनाहों का वेट कम करने के लिए हम क्यों नहीं छोड़ सकते, सिर्फ सोचने की बात है। तो बहरहाल इसमें कितनी तवील बात थी। अब छठी बात जिससे हमें तकवा मिल सकता है वो क्या है, हया और इफ्फत। आप कह लीजिए कि अल्लाह की लाज का आना, जब तक अल्लाह से हया नहीं करेंगे तकवा नहीं आएगा, और बंदों से भी जो बेहयाई होती है ना वो इंसान को अल्लाह से दूर करती है। सुफियान बिन उयैना का कौल है, हया तकवा का सरपोश है, और बंदे के अंदर इस वक्त तक खौफ व खशियत पैदा ही नहीं होती जब तक वो शर्मो हया की दौलत से सरशार ना हो, और हया और शर्म ही वो नुस्खे कीमिया है जहले तकवा को मुत्तकी बनाने का फरीजा अंजाम देता है। क्या हया और इफ्फत के अलावा कोई और भी दरवाज़ा है जो बंदे को तकवा की हरम सरा में दाखिल कर सके? बात समझिए आप लोग, हया के साथ भी बंदा बहुत सारे गुनाहों से रुक जाता है। जब हया नहीं होती तो गुनाह जो मर्जी करें। नबी सल्लम के एक हदीस का खुलासा है कि पिछली किताबों में ये बात लिखी थी, फ़ाइज़ लम तस्तही फसना माशीता, बस जब तेरे अंदर हया न रहे तू जो करना चाहे वो कर ले और तुझे इसकी इजाज़त है। तो हया बंदे को गुनाहों से रोक लेती है। मुबर्रद एक बहुत मारूफ शायर है अरबी के, वो कहते हैं कि जब मेरी ख्वाहिश नफ्स ने मुझे किसी फुखशकारी के करने की दावत दी तो हयाओ इफ़त और कर्मो फजल ही ने तो मुझे इस बुरे काम से रोका। यही वजह है कि मैंने किसी बदकारी का कभी कोई काम नहीं किया और ना मेरे कदम किसी मशकूक काम की अंजाम दही के लिए चलकर कहीं गए। तो खुलासा क्या है, अपने अंदर हया लाए, हया जितनी आती जाएगी, और इफ़त क्या आती, इफाफ से, पाक दामनी, अपने दामन पे धब्बा नहीं लगने देना। तो ये कैफियत इंसान को फिर गुनाहों से दूर करती हैं। सातवीं चीज़ बहुत ही खूबसूरत है, शायद बज़ाहर देखने में ना लगे लेकिन बहुत रेलिवेंट है तकवा के हासिल करने में, और वो क्या, सेहत और तंदरुस्ती में सदका खैरात करना जबकि तबीयत खर्च पर आमादा ना हो। ये कैसे, अता कहते हैं कि दीन और ईमान का बुलंद तरीन मरतबा तुम इस वक्त तक हासिल कर ही नहीं सकते जब तक कि तुम सदका और खैरात के आदी न बन जाओ। इस हाल में तुम सेहतमंद और चाको चौबंद हो, बुखल तुमको खर्च करने ना दे, और ऐश इशरत और नाजो नेम से लुत्फानंदोज़ होने का इरादा रखते हो, और तुमको फ़क्र व फाका का अंदेशा हो, इस हाल में सदका व खैरात करना तकवा की अलामत है। नोट किया आपने, यानी जब अपनी भी ख्वाहिशों की लिस्ट बड़ी लंबी थी, बल्कि ख्वाहिशों की नहीं, शॉपिंग लिस्ट अपनी ही बहुत बड़ी थी, अब क्या हुआ, उस वक्त आप अपने उस पैसे को किसी और के साथ खर्च कर दें। आप इमेजिनेशन में लाएं, अपने आप पे लेकर देखिए कि आप कोई चीज़ खरीदने के लिए पैसे जमा करते हैं। मिसाल है, आपने 1,000 करोन जमा किए जिससे आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, इतने में कि आप उसको खर्च करने जाते, शॉपिंग करते, किसी की तरफ से कोई ऐसी कॉल आ गई कि उनको अपनी किसी ज़रूरत के लिए 1,000 चाहिए था, दीन के काम में चाहिए था, मुसलमानों पे, किसी पे। अब ऐसे वक्त में वो 1,000 देना कोई आसान काम है? आम दिनों में 1 लाख देना आसान होगा, लेकिन अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करके 1,000 देना भी मुश्किल होगा, और इससे फिर आपको तकवा मिलेगा। और इसी पे मैं थोड़ी सी बात करूं कि ये तो माल और पैसे की बात है ना, खर्च की। अमूमन हम यही सोचते हैं, सदका खैरात का लफ्ज़ जब आता है तो हम उस वक्त क्या महसूस करते हैं कि अच्छा रुपया पैसे ही तो देना है ना, वो जो रखे हुए बैंकों में और इधर उधर गद्दों में छुपे, उसको निकाल के दे आते हैं। हालांकि याद रखिए, व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, आपकी ख्वाहिश थी कुछ लेने की पैसों से, तो आपने वो पैसा सदका दे दिया तो तकवा मिला। आप बड़े गौर से सुनिएगा, जैसे पैसे का सदका होता है ना, जैसे उसी तरह वक्त का सदका भी होता है। आप उस वक्त में पार्टी में जा रहे थे, सदका दे दिया आपने अल्लाह के लिए, आप अल्लाह के दीन की कमिटमेंट पे आ गए। ऐसे ही एक एक्सपीरियंस हुआ किसी के साथ, तो उन्होंने कहा कि आज मुझे पता भी चल गया जब मेरे से बात की एनी वे कि वो नहीं आ रही। मैंने पूछा क्या बात है, कोई उन्होंने पर्सनल रीज़न बताई, भाई जा रहे हैं, बहन जा रही हैं तो उनको छोड़ना है वो है। मैंने कहा मेरी बात सुनिए, वो कब जा रहे हैं? 1 बजे जा रहे हैं। मैंने कहा आप उनको सुबह 9 बजे रुख्सत कर दें, कोई ज़रूरी है कि आपने उनको 12:30 या 12:45 ही रुख्सत करना? आप उनको 9 बजे जाएं, मिल मिला के रुख्सत करके आ जाएं, और आप अपनी जॉब पे आएं जो अल्लाह ने आपको इतना बड़ा ऑनर दिया है, क्या ज़रूरी है कि आखिरी लम्हे तक हम जाने वालों को देखते रहे? फिर भी तो चले ही जाएंगे। अल्लाह ने बात समझा दी, वो आ गई। मैंने इतनी दुआएं दी, मैंने कहा अल्लाह आपके जो भी हालात जिसके भी होंगे, ऐसे आम हम सबके साथ होते हैं, जिस वक्त हम किसी बच्चे की मोहब्बत में अपने काम से हटें, जिस वक्त हमें मुश्किल लग रहा है अल्लाह के लिए निकलना, इस बात को याद रखें। और अक्सर ये जुमला आपने मेरे से सुना होगा कि आम हालात की नेकियां बंदे को, यानी आम हालात जब होते हैं ना हमारे, कॉमन होते हैं। आप इधर मिसाल है कि स्कूल में आते हैं, आपका कोर्स शुरू है, आप रोज आएंगे तो इल्म मिलेगा ना आपको, मंडे टू फ्राइडे आना है, आपने कमिटमेंट कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह आप आएंगे। आम दिनों में आप आएंगे अपने आम हालात में तो आपको इल्म मिलेगा। जिस दिन मुश्किल होगा, यही कैफियत, जिस वक्त आना मुश्किल है उस दिन आएंगे तो तकवा और ईमान मिलेगा। और जिस वक्त तकवा और ईमान मिलना होता है, हम छुट्टी लिखे बगैर छुट्टी कर चुके होते हैं, बताना तो बड़ी दूर की बात है, खुद ही पता लग जाए तो बड़ी बात है, बाद में पता चले कहते जो होगा देखेंगे, पहले पूछ लिया तो जाने ही नहीं देंगे। हालांकि मैं आपको अपनी आदत बताती हूँ, सिर्फ ऑन साइट की नहीं, ऑनलाइन पे भी कई साथी हैं, हज पे जाते हैं इधर से उधर, माशाल्लाह सारा वक्त एडमिन होते हैं तो ईमेल्स कॉमन आती हैं, कभी कभी मैं भी चेक कर लेती हूँ। जहाँ मुझे पता चलता है कोई सिस्टर पाकिस्तान जा रही हैं, इंडिया जा रही हैं, हज पे जा रही हैं, अपना काम किसी को दे रही, इतनी लंबी दुआ लिख के भेजती हूँ, अल्लाह आपका जाना बरकत का करे, जहाँ जा रही हैं वहाँ खैर करे, वहाँ कोई सदका जारिया करे, अमान में जाए। ये कैसे हो सकता है कि मैं और आप अब कभी जाएंगे नहीं कहीं, हमने अब हज नहीं करना, हमने कभी पाकिस्तान नहीं जाना, जाएंगे, ये अब हमारा लाइफ टाइम काम है। लेकिन अगर सिस्टम के साथ चल के इन सारी चीज़ों को लेके चलते हैं तो दुआएं लेते हैं, वरना क्या लेंगे, कुछ भी नहीं मिलता। कहाँ दुआ निकलती है दिल से उस बंदे के लिए कि दूसरे आपको बता दें वो तो पाकिस्तान गए हैं, अच्छा जी अल्लाह करे खैर से आ जाएं वापस। तो याद रखिए कि जब तक हम मुश्किल हालात में अल्लाह के रास्ते में नहीं आएंगे, बात नहीं बनेगी। ये मोहब्बतों का सदका होता है, ये कुर्बानियों की ज़मीन पे दीन के पौधे लगते हैं। जब आप कॉम्प्रोमाइजिंग होने वाला दीन लोगों को सिखाते हैं, मैं अपने ऊपर लेके बताती हूँ, आज मैं इसलिए नहीं आ सकती ये मजबूरी, और अगला 6 महीने मैं ये नहीं कर सकती, अगले 2 महीने मैं ये नहीं, और अब मुझे एक लंबी छुट्टी चाहिए, अब मेरा सैर का मूड आ गया, ये हुआ वो हुआ, ये मेरे नखरे ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, आप तो देख लेंगे मेरे, ये तो मुझे यकीन है। अल्लाह नहीं देखेगा, अल्लाह कहेगा जाओ तुम छुट्टी करो, तुम्हें सैरें करनी है शौक से करो। तो जब तक अपनी मनपसंद चीज़ें अल्लाह को नहीं देंगे, जज्बे, कई दफ़ा आपको मोहब्बतों की कुर्बानी देनी पड़ती है, तभी तो अल्लाह देखता है कि किससे प्यार ज़्यादा है। तो लिहाजा ऐसे वक्त पे फिर इंशाल्लाह तक मिलता है, और कभी कभी किया करें, उस दिन आप आके सबक ना सुने, जो अपना काम कर रहे थे वो ना भी फोकस होके कर सके, लेकिन आपके अल्लाह मैंने किताब में पढ़ा था मुश्किल हालात में खर्च करूंगी तो तकवा मिलेगा, तो अल्लाह मुझे तकवा दे। लेकिन ये हमारी तड़प पैदा कब होगी? जब हमें तकवा की तलब होगी। जब तकवा की दिल से तलब होगी ना, तो फिर इंशाल्लाह ये कुर्बानियां करके मज़ा भी आएगा।